नमस्कार भारत, 16 नवंबर दिन सोमवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। पेरिस में हमलों के दो दिन बाद फ्रांस ने बरसाए सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बम। पेरिस की पुलिस को हमलों के खतरनाक संदिग्ध की तलाश, जारी किया फोटो। बिहार चुनाव पर दलाई लामा का बयान, भाजपा को गुजरा नागवार।
कहीं ना कहीं ये हमारे अंदरूनी मसलों पर उनका बयान है, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह कहीं ना कहीं उनको इन सब बयानों से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए।
जानेंगे क्या ब्रांड मोदी की चमक पड़ रही है फीकी, और खबरें खेल की भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
मानसी दास से। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए चरमपंथी हमले के दो दिन बाद फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने इस्लामिक स्टेट पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले रक्का शहर में फ्रांस के 12 फाइटर जेट ने 20 बम बरसाए। इस दौरान कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें आईएस का एक कमांड सेंटर, एक गोला बारूद डिपो और लड़ाकों का शिविर भी शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने शुक्रवार को पेरिस में हुए हमलों को आईएस की तरफ से युद्ध की घोषणा वाला कदम बताया था। पेरिस हमलों में शामिल हमलावरों के संबंध में मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार फ्रांस की पुलिस जिस व्यक्ति को ढूंढ रही है उसे हमलों के कुछ घंटों बाद पुलिस ने रोका था। 26 साल के अब्दे सलाम सलाह एक कार में थे जो बेल्जियम की ओर जा रही थी। माना जा रहा है कि अब्दे सलाम उन तीन भाइयों में से एक है जो इस हमले से जुड़े हैं। एक भाई की हमले के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में मारे जाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस में नोट्रेडेम कैथेड्रल में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। कई लोगों ने उन रेस्तरां के आगे भी मोमबत्तियां जलाई और फूल चढ़ाए जहां चरमपंथियों ने गोलियां बरसाई थी। लाजित साराह कैरोलिन बार के आगे फूल चढ़ाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जो हुआ उस कारण इस महान शहर का हर नागरिक गुस्से में है, क्योंकि वो लोग, मैं नहीं जानता मैं कैसे उनके बारे में बताऊं, उन लोगों के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वह किया है जो पहले किसी ने नहीं किया। ये थे लाजिद सलाह के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर उन्हें सीरिया में की जा रही कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। जी20 की बैठक के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक में सीरिया संकट पर बातचीत हुई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री खड्गा प्रसाद ओली ने भारत से अपील की है कि वह नेपाल पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए ताकि ईंधन, दवाई और खाद्य जैसी जरूरी वस्तुएं देश में पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के कारण एक भयावह मानवीय संकट पैदा हो रहा है जो इस साल आए भूकंप से अधिक खतरनाक है। भारत किसी तरह के प्रतिबंध लगाने की बात से इनकार करता रहा है। कोलंबिया के सबसे बड़े विद्रोही समूह रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया फार्क ने स्वास्थ्य के आधार पर अपने 81 लड़ाकों को छोड़ने का अनुरोध किया है। फार्क का कहना है कि कोलंबिया के अनिश्चित जेलों में कैदियों का जीवन खतरे में है। अमेरिका के यूटा में समलैंगिक विवाहित जोड़ों पर चर्च की नई मुश्किल नीतियों के चलते मॉर्मन्स के इस्तीफे में भारी उछाल आया है। शनिवार को मात्र कुछ 100 मॉर्मन्स ने इस्तीफा दिया था, लेकिन रविवार को यह आंकड़ा 1500 तक पहुंच गया। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी सेवा के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। बात सबसे पहले पेरिस की, जो इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी हमलों के बाद अब भी शोक में डूबा है। शहर के लोगों के लिए ये समझना अब भी मुश्किल है कि कैसे शुक्रवार की एक खुशनुमा शाम देखते ही देखते 130 लोगों की मौत की गवाह बन गई। फ्रांस के अधिकारी एक तरफ जहां इस चरमपंथी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटे हैं, वहीं फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने कल सीरिया में इस्लामिक स्टेट के गढ़ माने जाने वाले रक्का शहर में बमबारी की। बताया जाता है कि इस दौरान आईएस का एक कमांड सेंटर, एक गोला बारूद डिपो और लड़ाकों का शिविर निशाना बनाया गया। पेरिस हमलों के बाद पूरी दुनिया फ्रांस के साथ खड़ी नजर आ रही है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए मानसी दास से।
पेरिस के मशहूर नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक विशेष प्रार्थना सभा। इस सभा में उन लोगों को याद किया गया जो शुक्रवार को पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों में मारे गए थे। इस सभा में पेरिस के आर्क बिशप कार्डिनल आंद्रे विंगत्रोई ने कहा कि फ्रांस की राजधानी को एक अनोखी क्रूरता का निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा,
ils ont été sauvagement exécutés.
लोगों को निर्ममता से मारा गया। यहाँ प्रार्थना करने का मकसद है कि हम उनके दुख बांटें, उनके लिए प्रार्थना करें, खासकर उनके लिए जो अस्पतालों में हैं और उन डॉक्टरों के लिए भी जो उनका इलाज कर रहे हैं।
ये थे आर्क बिशप कार्डिनल आंद्रे विंगत्रोई के शब्द। हमले में 129 लोग मारे गए थे। इसकी जिम्मेदारी इस्लामी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। पेरिस हमले के दो दिन बाद फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले रक्का पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री के अनुसार 12 फाइटर जेट ने कई ठिकानों को निशाना बनाया और 20 बम गिराए। उन्होंने कहा कि हमले में इस्लामिक स्टेट का एक कंट्रोल सेंटर, शस्त्रागार और एक ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त हुए हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने पेरिस पर हुए हमलों को युद्ध बताया था और कहा था कि वे इन हमलों का सख्त जवाब देंगे। इधर फ्रांस के गृह मंत्री बेरना कासेनेव मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हमलों के बारे में बताया कि इसकी प्लानिंग बेल्जियम में रहने वाले कुछ लोगों के समूह ने तैयार की, जिन्हें फ्रांस में बैठे कुछ लोगों से मदद मिली। उन्होंने कहा,
ये खौफनाक हमले जो हम पर हुए हैं, विदेशी जमीन पर प्लान किए गए और उन्हें बेल्जियम में रहने वाले कुछ लोगों की मदद से अंजाम दिया गया। जांच से पता चलता है कि इन लोगों को फ्रांस के भीतर से भी सहयोग मिला था।
ये थे फ्रांस के गृह मंत्री बेरना कासेनेव के शब्द। फ्रांस की पुलिस ने अब्दे सलाम सलाह नाम के एक 26 साल के व्यक्ति का फोटो जारी किया है। पेरिस हमलों से संबंधित माने जा रहे इस व्यक्ति को पुलिस ने खतरनाक बताया है। माना जाता है कि अब्दे सलाम उन तीन भाइयों में से एक है जो इस हमले से जुड़े थे। एक भाई की हमले के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि ये भाई ब्रुसेल्स के मोंटप्लांक इलाके में रहते थे। इसी इलाके में रहने वाले बेन कहते हैं,
इन युवाओं के साथ बहुत सी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन्हें कमाई करने के इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। देश को इन्हें जोड़ने के अपने कानूनों पर फिर से गौर करना होगा। उन्हें खासकर इन युवा लोगों के लिए कुछ करना होगा। मोंट ब्लांक में तो सब कुछ सही था।
ये थे मोंटप्लांक निवासी बेन के शब्द। सिर्फ फ्रांस और बेल्जियम में ही नहीं, इस हमले की चर्चा तुर्की में हो रहे G20 की वार्ता में भी सुनाई दी। वार्ता के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं में यह सहमति बन गई है कि सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है और चरमपंथ के खिलाफ जल्द ही कड़े कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं।
बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सारा आपको सुना रही थी मानसी दाश। और इधर भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में गृह सचिव स्तर की 3 दिन की बातचीत आज से शुरू हो रही है। इसे लेकर हमारे सहयोगी दिनेश उप्रेती ने बीबीसी बांग्ला सेवा के शुभज्योति घोष से बात की और सबसे पहले पूछा कि पेरिस में हुए चरमपंथी हमले के बाद क्या इस मीटिंग की अहमियत बढ़ गई है और इसका क्या मुख्य एजेंडा है।
देखिए, ये जो होम सेक्रेटरी लेवल टॉक्स है, ऐसे तो ये रूटीन मीटिंग था। 3 दिन का जो मीटिंग आज से शुरू हो रहा है, ये ऐसे रूटीन मीटिंग था, लेकिन पेरिस में हमले के बाद इनका अलग सा एक कॉन्टेक्स्ट आ गया, अलग सा इम्पोर्टेंस आ गया। इसलिए कि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये सोचना है कि इस्लामिक स्टेट का इन्फ्लुएंस इन दोनों देश में कितना जबरदस्त है, ये अभी उनको सोचना पड़ रहा है। अभी तक तो ये ढाका या दिल्ली, अभी तक कोई देश ने अभी तक फॉर्मली ये एडमिट नहीं किया, ये स्वीकार नहीं किया उसमें आईएस नेटवर्क का कई अस्तित्व है। लेकिन अब हम सबको जानकारी है कि इंडिया में कभी भारतीय मूल के बहुत सारे नागरिकों को पकड़ा गया है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की कस्टडी में आया है, जो आईएस के अगर रिक्रूटर थे, नहीं तो आईएस के फुट सोल्जर्स, जैसे हम योद्धा कह सकते हैं वैसे थे, वो अभी इंडिया की पकड़ में है। और बांग्लादेश में भी ऐसे बहुत सारे किलिंग्स की, मर्डर की घटना घटी है पिछले कई महीनों से, ब्लॉगर्स की किलिंग्स है, कोई फॉरेन नेशनल्स की, विदेशी मूल की नागरिकों की हत्या हुई है जिसके साथ आईएस के नाम जुड़ गए हैं। तो दोनों देश इस मामले में चिंतित है और पेरिस हमले के बाद मुद्दा ऐसे जोर पकड़ ली है कि कोई ये आपको इग्नोर, कोई देश इनको इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते, इसीलिए ये सचिव स्तर की बैठक में ये मुद्दा आएगा।
बांग्लादेश ने उल्फा के महासचिव को भारत को सौंपा, उसी तरह की क्या सामंजस्य से आप देख पा रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर आईएस की सूचनाओं को लेकर, गुप्तचर सूचनाओं को लेकर कोई ऐसी बात होती है तो क्या वो सेरेबिलिटी क्या बढ़ सकती है?
देखिए, ये जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको आप तथ्य विनिमय कह सकते हो, जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आ रहे है दोनों देश की जो गोयंदा संस्था है उसके बीच, ये ऑलरेडी चल रहे है। ऐसे नहीं कि ये बैठक के बाद शुरू होगा, ये पहले से ही चल रहा है। और जैसे आपने बताया कि अनूप चेतिया का हैंडओवर हो गया कुछ दिन पहले, और उसके तुरंत बाद बांग्लादेश की एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नूर हुसैन, जो कलकत्ता की जेल में थे, एक साल से ज़्यादा टाइम उधर बिताया था, उनको भी तुरंत अनूप चेतिया के हैंडओवर के बाद बांग्लादेश के वापस भेज दिया इंडियन अथॉरिटीज ने। तो इस बारे में दोनों देश की जो कोऑपरेशन है उनकी सिलसिला जारी है, और आईएस की कोई भी एक्टिविटीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दोनों देश के मिल रहे उनको शेयर कर रहे दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी। और ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि होम सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के बाद ये शेयरिंग को एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, एक प्रातिष्ठानिक रूप मिलेगा उनको, ये जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है उनकी।
भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में आज होगी गृह सचिव स्तर की वार्ता। जानकारी दे रहे थे बांग्ला सेवा के हमारे साथी शुभज्योति घोष, जिनसे बात कर रहे थे दिनेश उप्रेती। और इधर भारत में असहनशीलता को लेकर जारी बहस के बीच तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दलाई लामा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे से जाहिर होता है कि भारत के ज्यादातर हिंदू अब भी समरसता में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान के बाद दलाई लामा को सलाह दी है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना दें, जबकि कांग्रेस समेत अन्य दलों ने उनके बयान का स्वागत किया है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
तिब्बती लोगों के धर्मगुरु दलाई लामा ने असहनशीलता को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बिहार चुनाव के नतीजों का जिक्र क्या किया, एक नया विवाद शुरू हो गया। जालंधर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे 14वें दलाई लामा से पूछा गया कि टॉलरेंस को लेकर जो बहस जारी है उसे लेकर वो क्या सोचते हैं। इस पर दलाई लामा ने कहा,
As I mentioned earlier, I think a few individual political interest or party politics is sometimes it happens. But that, I think, not the...
जैसा मैंने पहले कहा था कि कुछ लोगों की दिलचस्पी या दलीय राजनीति की वजह से ऐसा कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि वो भारत की असल तस्वीर नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव ने दिखा दिया है कि ज्यादातर हिंदू अब भी समरसता में भरोसा रखते हैं। दलाई लामा के शब्द। दलाई लामा का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रास नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दलाई लामा के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने धर्म गुरु के रूप में भारत में शरण ली है। स्वामी ने कहा कि अगर वो राजनीतिक टिप्पणी करने लगेंगे तो चीन की आपत्तियों की तरह हमें भी सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने भी दलाई लामा की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा,
देखिए, भारत सहिष्णु है और आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है, हमारी ये पहचान ही है। जहाँ तक उन्होंने बिहार के लोगों के बारे में बात की, बिहार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी टॉलरेंस है हर चीज को लेकर। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदरूनी मसलों पर उनका बयान है, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह कहीं ना कहीं उनको इन सब बयानों से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए।
उधर कांग्रेस ने दलाई लामा के बयान का स्वागत किया है। दलाई लामा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये बयान बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने कहा,
दलाई लामा साहब ने बहुत ही सही बातें कही हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया है कि सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं सिवाय बीजेपी के। दलाई लामा जी ने ठीक कहा है, बिहार के लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों को नकारा है और ये ठेस लगी है, ये चोट लगी है भारतीय जनता पार्टी को। और कहीं ना कहीं लगता है कि दलाई लामा जी की बातों से बीजेपी का जो जला हुआ था उस पे नमक पड़ा है।
जनता दल यूनाइटेड ने भी दलाई लामा के बयान की सराहना की है। पार्टी के नेता केसी त्यागी ने उनके बयान को दक्षिण पंथियों पर करारा हमला बताया है। हालांकि पक्ष और विपक्ष के इन बयानों के बीच बड़ा सवाल ये है कि दलाई लामा ने भारतीय समाज की जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की थी, क्या वो सही तरीके से दुनिया के सामने पहुंचेगी। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
वैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन दौरे के दौरान भी असहनशीलता के मुद्दे पर ब्रिटिश मीडिया के तीखे सवाल झेलने पड़े थे। ब्रिटिश मीडिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल किए उससे उनके समर्थकों ने पसंद नहीं किया। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने मोदी की जीवनी लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय से बात की और पूछा कि उनकी नज़र में इन सवालों को उठाना कितना उचित है।
वेस्टर्न मीडिया ने बिल्कुल वही सवाल पूछे जो हर एक पत्रकार पूछना चाहता है। हिंदुस्तान के पत्रकार, हम लोगों को आज तक मौका नहीं मिला है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिसमें ये सवाल मोदी जी को हम लोग पूछ सकें। जब जब कहा जाता है बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से मोदी जी कुछ बात करते हैं, या तो एक तरवा भाषण होता है या फिर कुछ बहुत सिलेक्टेड लोगों से मिलकर इनफॉर्मल बातचीत करते हैं। तो किसी भी स्टेट्समैन के लिए डेढ़ साल के बाद एक पिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, और जबकि देश में इतना सब कुछ हो गया, तो मेरे ख्याल से दिखाता है चीजों को अवॉइड करते हैं। तो जब विदेश में जाते हैं तो मोदी जी शायद अवॉइड नहीं कर सकते थे। और जो ब्रिटिश पत्रकारों ने जो सवाल पूछे वो बिल्कुल उन सवालों को आर्टिकुलेट किया जो हिंदुस्तानी पत्रकारों के टॉप ऑफ द लिस्ट में है।
जैसे ही नरेंद्र मोदी ब्रिटेन से रवाना होते हैं, दलाई लामा का एक बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि आम हिंदू हारमनी पसंद करता है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, सबसे पहले बात तो बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के समर्थकों को ये कहना कि दलाई लामा भी बिल्कुल लेफ्ट लिबरल क्रिटिक्स में से हैं जिनका कोई काम नहीं है सिवाय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के क्रिटिसिज्म करना। इसी तरह से जब वो वहाँ थे तो अनीश कपूर, बहुत नामी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने गार्डियन अखबार में अपना आर्टिकल लिखा, उनको भी नहीं कहा जा सकता कि वो प्रोफेशनल कॉम्युनिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं जिनका कोई काम नहीं है सिवाय मोदी जी और आरएसएस और संघ परिवार की क्रिटिसिज्म करना। तो आखिरकार कितनों को आप अपने से अलग करोगे, यही चीज सवाल जो है ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को सोचना चाहिए।
आपने नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखी है, आपको क्या लगता है कि फिलहाल की स्थिति में उनके लिए बड़ी चुनौती क्या है? इमेज बदलने की चुनौती है या जो वोट बैंक खिसक गया है बिहार चुनाव के बाद, ऐसा लग रहा है कि वो करिश्मा जो चुनाव जिताता था नरेंद्र मोदी के नाम का वो घट गया है, बड़ी सबसे बड़ी उनकी चुनौती फिलहाल के लिए है क्या?
उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उनका वोट बेस घटा है, आप बिहार का ही कॉन्टेक्स्ट लीजिए, बिहार में करीब 29% वोट उनको 2014 लोकसभा चुनाव के समय था, उनकी पार्टी को था, वो घट के अभी 24% हो गया है, 5% घटा है वोट शेयर बिहार में। इसी तरह से दिल्ली में भी काफी नुकसान हुआ था और स्टेट्स में भी नुकसान देखने को मिलता है। एक तरह से ब्रांड मोदी का जो वैल्यू था उसका एक कॉन्स्टेंट एक राष्ट्रव्यापी एक इरोजन हुआ है। तो सबसे पहले तो मोदी जी के सामने चुनौती है कि किस तरह से ब्रांड मोदी की वैल्यू को रिजरेक्ट कर सकते हैं, दोबारा उसको बढ़ा सकते हैं। सवाल ये कि मोदी जी इसको बढ़ाने की कोशिश किस तरह से करेंगे, अच्छे रास्ते से करेंगे या खराब रास्ते से करेंगे। मैं अच्छा और खराब मैं अपने पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से अच्छा रास्ता है कि अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जो डगमगा रखी है, जो उस तरह से मार्केट में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, उस पर अगर कॉन्सेंट करें। खराब रास्ता ये है कि बीफ, कैंसर, गाय, पाकिस्तान, यही सब बात करते रहे। तो आप अगर संकीर्णता फैलाना चाहते हैं, आप अगर और प्रेजुडिस फैलाना चाहते हैं एक कौम की दूसरे कौम के साथ, तो फिर हिंदुस्तान की जिस तरह से जो फ्रेजाइल सोशल ऑर्डर है उसमें और दरारें पड़ेंगी और वो अच्छी बात नहीं होगी, बशर्ते उसमें उनको लगता है कि उसमें उनको फायदा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय और उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी वात्सल्य राय। पेरिस में हुए हमले की दुनिया भर में जहां चर्चा है, वहीं पाकिस्तान में मीडिया में क्या कुछ इस बारे में चल रहा है, क्या कुछ दिख रहा है, यही जानने की कोशिश की है इस बार पाकिस्तान से वसुतुल्लाह खान ने अपनी इस डायरी में।
आपने वो मिसाल तो कभी ना कभी सुनी होगी कि जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। जाने भारत में भी मीडिया का यही हाल हो, लेकिन अपुन के पाकिस्तान में तो ऐसा है कि जब मीडिया आज़ाद और निजी नहीं था तो अखबार पढ़ने और टीवी देखने वालों को पाकिस्तान की होना हो विश्व के बारे में अच्छी खासी जानकारी रहती थी। सरकारी मीडिया पाकिस्तानियों का ध्यान देश में चल रहे घोटालों से हटाने के लिए अपने न्यूज़ बुलेटिन को विदेशी घटनाओं से भर देता था। پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اب سے کوئی 15 پہلے میڈیا سرکاری سے نجی ہو گیا اور آج ترقی کرتا کرتا اپنی محنت سے کنویں کا وہ مینڈک بن گیا ہے جسے دیش سے باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کی نہ تو کوئی پرواہ ہے نہ چنتا نہ دلچسپی۔ مثلاً رات کو جب میں انیک انتراشٹریہ ٹی وی چینلوں کی سرفنگ کر رہا تھا تو ہر طرف پیرس کے نرسنگھار کو لے کے بھانت بھانت کی ہا ہا کار مچی پڑی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے پاکستان کے دیسی چینلوں پہ ریموٹ کو روکا تو خبریں دیکھ کے طبیعت جھک ہو گئی۔ ذرا ایک دگج دیسی چینل کے مکھیہ آکرشن سنیے اور ہر سرخی کے ساتھ ڈھیں 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 خود لگا لیجئے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ایک پولیس والا گھائل، عمران خان نے پنچایتی چناؤ ابھیان شروع کر دیا، لاہور میں ڈینگی بخار کے 12 روگی اسپتالوں میں داخل، لندن میں مودی آگے آگے برٹش میڈیا پیچھے پیچھے، اور پیرس میں دھماکوں اور فائرنگ سے مرنے والوں کی سنکھیا 128 تک جا پہنچی۔ یعنی پیرس میں گھٹی گھٹنا کی اوقات یہ ہے ہمارے میڈیا کی نظروں میں کہ اسے سب سے آخری سماچار ایک پائدان پہ جگہ ملی۔ کنویں میں بند اس میڈیا کلچر نے بس اتنا کیا ہے کہ سوچ کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دیے ہیں۔ جب دوسرے کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا تو خوشی اور تکلیف بانٹنے کی عادت کہاں سے پڑے گی؟ چنانچہ کیا ان پڑھ کیا پڑھا لکھا سب ہی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جی پیرس کو چھوڑیں، اتنے تو ہمارے یہاں روز مر جاتے ہیں۔ کس نے کہا تھا پچھمی دیشوں کو کہ سیریا اور عراق میں جا کے پنگا لیں؟ جب آپ داعش کو ماریں گے تو وہ بھی تو ماریں گے۔ ارے صاحب، یہ سب یہودی اور ہندو مل کے کروا رہے ہیں، مسلمان تو بیچارہ ہر جگہ پیٹ ہی رہا ہے نا۔ اس نے نہ مارا، اس نے مار دیا۔ اچھا، پیرس میں 130 لوگ مر گئے؟ ویری سوری یار۔ یہ بتا تیرے پرموشن کا کیا بنا، مٹھائی نہیں کھلایا گا سالے؟ ان حالات میں جو بھی یہ کہے کہ میڈیا لوگوں کو اپنے خول سے باہر نکالتا ہے، انہیں باقی دنیا سے جوڑتا ہے، تو ایسے آدمی کو کم از کم ایک بار تو گھور کے دیکھنا بنتا ہی ہے۔ گالیاں بھلے دل ہی دل میں دے لیجئے۔
یہ تھی پاکستان سے وسط اللہ خان کی ڈائری، اور اس کے بعد اب باری ہے اخباروں کے پنے پلٹنے کی۔ مانسی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مانسی، کیا کچھ چھپا آج کے اخباروں میں؟
لگ بھگ سبھی اخباروں میں پیرس حملہ اور G20 دیشوں کی بیٹھک میں شامل دیشوں کے آتنک سے مل کر لڑنے کے وعدے کو پہلے پنے پر جگہ دی گئی ہے۔
جی،
ہندوستان نے پیٹرول ڈیزل کے بڑھے داموں کو بھی پہلے پنوں میں جگہ دی ہے۔ بھاسکر میں ایک بے حد دلچسپ خبر چھپی ہے۔ خبر کے انوسار مدراس ہائی کورٹ نے ایک معاملے کی سنوائی انٹرنیٹ کے ذریعے کی ہے۔ یاچکا کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے معاملہ ٹالنے کی بجائے جج نے انٹرنیٹ کے ذریعے عدالت لگا کر سنوائی کی اور فیصلہ ترنت ای میل کے ذریعے ہی بھیج دیا۔
یہ تو ہائی ٹیک عدالت ہوگی، ہائی ٹیک فیصلہ ہو گیا۔
جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں اسمارٹ سٹی کے لیے اسمارٹ عدالت بھی۔ امر اجالا نے دلائی لاما کی بہار نتیجے پر پرتکریا پر چھڑی سیاسی بحث کو پہلے پنے پر جگہ دی ہے۔ اس نے ایک مودی کے بیان کو بھی پہلے پنے پر جگہ دی ہے، جس میں مودی جی نے کہا ہے کہ آتنکیوں کے فنڈنگ اور ہتھیاروں کی آپورتی پر لگام لگائے جانے کی ضرورت ہے۔
جی،
دی پائونیئر میں ایک خبر چھپی ہے جس کے انوسار نئے سال پہ سرکار ہر گھر دستک نام سے ایک کیمپین کی شروعات کرنے والی ہے، جس کے انترگت 7 راجیوں میں کشٹھ روگ سے گرست 50 ضلعوں میں مریضوں کی جانچ کی جائے گی، تاکہ سنکرمن کا پہچان جو ہے وہ پہلے ہی سمے پر یعنی جلدی سے جلدی کی جا سکے،
یعنی سمے رہتے بیماری کا پتہ چل جائے، اس کے لیے کوشش ہے۔
ادھر نئی دنیا میں بھی ایک دلچسپ خبر چھپی ہے کہ ایمس میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت دیش کا پہلا دوا سٹور امرت شروع کیا گیا ہے، جس میں کینسر کی 200 دوائیں، پیس میکر سہت ہارٹ بیماری سے جڑی ہوئی 150 کے لگ بھگ دوائیں اور 186 انیہ دوائیں بھی ہیں، جو کہ 60% سستے در پر ملیں گی۔
مانسی، بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کے لیے، اور اب کارکرم میں بڑھتے ہیں، چلتے ہیں کھیل کی خبروں کی طرف۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ بھارت کی سائنا نہوال اپنا چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا خطاب بچا نہیں سکی، اور کل فائنل میں انہیں میزبان چین کی زوئی روئی لی کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ पिछली चैंपियन और शीर्ष वरीयता के साथ खेल रही साइना नेहवाल को पांचवी वरीयता हासिल। जुई रुई ली ने केवल 39 मिनट में ही बेहद आसानी से 21 बार है 21-15 से बात दी। वहीं पुरुष एकल वर्ग का खिताब मलेशिया के ली चोंग वेई ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता हासिल चीन के चेन लोंग को 50 मिनट के संघर्ष के बाद 21-15 21-11 से हराया। उधर बेंगलोर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन कल बारिश में धुल गया। सुबह की बूंदाबांदी के बाद बारिश हुई और जब रुकी तो लगा कि शायद 10 बजे मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके बाद तो रुक रुक कर बारिश होती रही। अंततः दूसरे दिन का खेल बिना एक भी गेंद किए समाप्त घोषित करना पड़ा। इससे पहले पहले दिन दक्षिण अफ्रीकी टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के बाद अपनी पहली पारी में 214 रन पर ही सिमट गई थी, जबकि इसके बाद भारत ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। वैसे आज भी भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। वहीं पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने रॉस टेलर और केन विलियमसन की शानदार बल्लेबाजी के दम पर कल ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब दिया और तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय 6 विकेट खोकर 510 रन बना लिए थे। रॉस टेलर स्टंप के समय 235 रन बनाकर खेल रहे थे। उनके अलावा केन विलियमसन ने भी 166 रनों की शतकीय पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 559 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की थी। उधर जिम्बाब्वे ने कल बीरपुर में खेले गए दूसरे और आखिरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान बांग्लादेश को केवल एक गेंद शेष रहते 3 विकेट से मात दी। जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 136 रनों का लक्ष्य था, जो उसने ल्यूक जोंगवे के 34 और मेलकॉल्म वालेर के 40 रन की मदद से 19.5 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 135 रन बनाए थे। इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने 2 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया।
खेलों का हाल आपको सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब चलने से पहले नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जिन पर आज रहेंगी सबकी नजरें।
पेरिस में चरमपंथी हमले के बाद फ्रांस के संस्कृति और संचार मंत्री फ्लोर पेलारांग ने कहा है कि देश में सांस्कृतिक संस्थाएं सोमवार से खोल दी जाएंगी। सोमवार को नेटो के मुख्यालय में भी पेरिस हमलों में मारे जाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। पेरिस हमले और इस्लामिक स्टेट से निपटने की रणनीति पर सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ब्रिटेन, यूके, इटली और फ्रांस के नेताओं से बातचीत करेंगे। तुर्की में G20 सम्मेलन के दूसरे दिन आर्थिक अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, भ्रष्टाचार से निपटने संबंधी बातों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व के बाजार की स्थिति पर चर्चा होगी, जिसमें हाल के महीनों में बढ़े प्रवासी संकट और इस कारण देशों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव पर बातचीत होगी। सोमवार को सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी प्रेजेंटेशन देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज दुबई में इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीट में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। वे यूएई के वित्त मंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मिलेंगे और दुबई में बसे प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे।
और अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए चरमपंथी हमले के 2 दिन बाद फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने इस्लामिक स्टेट पर हमले करना शुरू कर दिया है। पेरिस हमलों में शामिल हमलावरों के संबंध में मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार फ्रांस की पुलिस जिस व्यक्ति को ढूंढ रही है उसे हमलों के कुछ घंटों बाद पुलिस ने रोका था। हमले में मारे जाने वालों को लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर उन्हें सीरिया में हो रही कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री खड्गा प्रसाद ओली ने भारत से अपील की है कि वह नेपाल पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए ताकि ईंधन, दवाई और खाद्य जैसी जरूरी वस्तुएं देश में पहुंच सके। कोलंबिया के सबसे बड़े विद्रोही समूह फार्क ने स्वास्थ्य के आधार पर अपने 81 लड़ाकों को छोड़ने का अनुरोध किया है। अमेरिका के यूटा में समलैंगिक विवाहित जोड़ों पर चर्च की नई मुश्किल नीतियों के चलते मोरमोन्स के इस्तीफे में भारी उछाल आया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत में अभी के लिए बस इतना ही। ठीक एक घंटे बाद आपसे मिलेंगे कार्यक्रम विश्व भारती में। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। अशोक कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।